आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चार दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमरीकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंस की ये पहली भारत यात्रा है। अमरीकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। दोनों देश आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र की ये पहली यात्रा होगी। सऊदी अरब भारत का पांचवां और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉ सुहेल एजाज खान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की जेद्दा यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि सिविल सेवक राष्ट्र को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी शासन में नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अब से कुछ देर में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में कुल 14 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। यह दिवस उस दिन को मनाने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। प्रिया मंडल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। झारखंड में आज बोकारो में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक भी मारा गया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 8 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान भाग निकले माओवादियों को घेर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी बंद हो गई है लेकिन तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने के प्रयास जारी हैं। रामबन जिले में कल बादल फटने से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई थी। रामबन के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से न निकले। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज बारिश के कारण आज रामबन जिले में स्कूल और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में आंधी और बिजली गिरने का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।